सुबह का आह्वान जो है अक्टूबर से लेकर के मार्च तक ही किया जाता है और वो आते हैं।
हाँ जी,
वो और महीनों में क्यों नहीं बुलाते और क्यों नहीं आते हो?
वो समझते हैं कि भगवान जो है वो कलयुग के अंत और सत्ययुग के आदि में आता है, तो हर वर्ष सत्ययुग का अंत, हर वर्ष नया युग है ना, तो हर वर्ष में पुराना युग भी होता है। तो अक्टूबर से पुराना युग हो जाता है शुरू, और जनवरी फरवरी मार्च नया युग हो जाता है। ये संगम युग है, इसलिए भगवान का आह्वान संगम युग में ही किया जाना चाहिए और युग में नहीं।
तीन महीना इधर, तीन महीना उधर।
हाँ जी, और एक बार ही उठ जाइए ना
बाबा।
हाँ जी,
जो आदि में बच्चे चोरी चोर के चले गए उनको बम्मा बाबा फिर बाद में बुलाते थे ब्राह्मणों के तन में, वो कैसा होता प्रक्रिया? जो चोरी चोर के होता तो दूसरा जन्म लिया होगा, फिर ब्राह्मणी में बुलाया वो किस तरह?
तो प्रैक्टिकल में आते थे क्या?
नहीं, फिर भी वो कैसा हो प्रक्रिया?
वो प्रैक्टिकल में आते हैं क्या?
बातें तो होती,
प्रैक्टिकल में तो नहीं आते ना। जैसे पितरों को बुलाया जाता है और पितर आते हैं, तो क्या पितर शरीर में से जो जहाँ जन्म ले लिया वहाँ से छोड़ करके सही जाते हैं?
नहीं, तो बातें तो होती है, आत्मा तो बात करती ना।
वो सिर्फ साक्षात्कार मात्र है, वो उनको साक्षात्कार होता है, वो प्रवेश करते हैं, वो अपनी बातें सुनाते हैं, लेकिन ऐसा है नहीं कि वहां से शरीर छोड़ करके आते हैं। ये सब खेल पाल है साक्षात्कार का। मीरा बैकुंठ देखती थी, तो क्या बैकुंठ होता था उस समय? नहीं होता था। हाँ, जैसे स्वप्न है ऐसे ही साक्षात्कार की लीला है।
ब्रह्मा बाबा साक्षात्कार को देख करके ज्ञान उनके मन में ज्यादा बैठा है ज्ञान।
हाँ, ज्यादा बैठा
है, मतलब हमारा पार्ट जो है नई दुनिया में ऐसा ऐसा होगा।
हाँ,
तो जैसे मीरा को प्रैक्टिकल में नहीं मिला।
हाँ,
वैसे ब्रह्मा बाबा को भी प्रैक्टिकल में इस शरीर द्वारा तो नहीं मिला ना?
हाँ, नहीं मिला, क्योंकि साक्षात्कार ही तो था, बुद्धि से निश्चय छोड़ ही बैठा। बुद्धि का साक्षात्कार पक्का होता है या बंदाखों का साक्षात्कार पक्का है?
बुद्धि का साक्षात्कार।
हाँ जी,
बुद्धि का समर्पण की बात बताइए।
हाँ जी,
बुद्धि का जो समर्पण होता है वो बाप समान बनता है।
बाप समान बनता है,
बुद्धि से जो समर्पण हो जाता है।
हाँ, तो माया बाप समान बन जाती है?
नहीं, तो माया कब शक्तिवान नहीं बनेगी?
हाँ,
कब शक्तिवान कम हो जाएगी माया? तो जिसने बुद्धि का समर्पण हो सके,
जब वो बुद्धि से समर्पित हो जाती है तो सर्वशक्तिवान बन जाती है।
वो कब होगी?
लास्ट में। इसीलिए लास्ट की जो दुनिया है बाद वाली आधा कंस की, उसमें उसको पद मिलता है ऊंचा, और जो 2500 साल की दुनिया है उसमें दास दासी बन के रहना पड़े।
अभी संगम युग में जो है, संगम युग में, अभी
संगम युग में तो दास दासी बनना ही है।
अभी तो वो वर्चस्व जमा रही
है। अभी अभी की प्राप्ति बाप कहाँ कराता है? बाप इस जन्म की प्राप्ति कराने के लिए आया है या भविष्य 21 जन्मों की प्राप्ति कराने के लिए आया है? आपको कौन सी प्राप्ति करनी है? हाँ जी
बाबा।
हाँ,
माया जो बाप बुद्धि से जब समर्पित होगी तभी वो सर्वशक्तिमान का टाइटल धारण करती है।
हाँ जी, उसके पहले तो सर्वशक्तिमान नहीं रहती।
नहीं,
तो आज के तारीख में जब माया ने अपनी बुद्धि समर्पित नहीं किया, फिर भी वो बाप को इतना कट्टर मुकाबला कैसे कर पाती है?
देखो, बुद्धि से अर्पण हो जाती है,
लेकिन आज तो
बाप का कुछ बिगड़ता नहीं है।
लेकिन बच्चे को तो खींचने में कामयाब हो जाती है ना, बाप से दूर करने में, निश्चय उखाड़ने में।
हाँ, तो तभी तो उसका 2500 साल राज्य चलता है।
नहीं, लेकिन आज
नहीं तो सर्वशक्तिमान क्यों टाइटल मिले? अगर 2500 साल से ज्यादा वो कम उसका राज्य चले तो सर्वशक्तिमान नहीं होगी ना।
लेकिन सर्वशक्तिमान तो बुद्धि समर्पित करने के बाद होती है ना।
हाँ जी, टू लेट का बोर्ड लग जाता है ना तब।
नहीं, सर, आज तो नहीं है।
स्वर्ग में थोड़े ही सर्वशक्तिमान होगी,
वो तो 2500 द्वापर के बाद।
हाँ, तो नरक की दुनिया में सर्वशक्तिमान होगी जब टू लेट का बोर्ड लग जाएगा।
लेकिन शूटिंग पीरियड में बाबा, अभी इस वक्त तो सर्वशक्तिमान नहीं है।
अभी कहाँ है सर्वशक्तिमान?
इस वक्त तो
अभी बाप के लिए सर्वशक्तिमान है क्या?
बाप के मुकाबले तो नहीं है ना।
बस बराबर है, उसका भी जोर बराबर है, बाप रस्सा कसी है। अब बच्चे जिसका साथ दे दें उसी की जीत हो जाएगी।
लेकिन बाप तो सर्वशक्तिमान है ना?
बाप सर्वशक्तिमान है,
वो तो नहीं है।
और माया अभी जिस दुनिया में है उसमें सर्वशक्तिमान है, वो स्वर्ग की दुनिया में नहीं है अभी। बाप तुमको स्वर्ग की बात सही देने आया है, इसलिए बच्चे जिस तरफ पाला में ज्यादा ताकत लगा देंगे उसी की जीत हो जाती है। अभी भी हार जीत का खेल चल रहा है, ये कहते हैं संघौ शक्ति कलौ युगे। कलयुग में संगठन की पावर ज्यादा काम करती है।
आज ऐसा कर्मों का शरीर का जो कर्म हो गए और अभी लाल शरण में हम लोग कुछ करते हैं।
हाँ जी,
याद बल से हम खत्म नहीं कर सकते।
और जब 100 गुना पाप चढ़ाते हैं सो कहा जाएगा।
लेकिन फिर दादी गुलजार को भी वो अभी शरीर से चुप्पू करना पड़ता है।
हैं?
दादी गुलजार भी आज भी अपने शरीर से चुप्पू कर रही है।
हाँ,
तो फिर उसका योगफल इतना अच्छा होगा ही ना।
अरे, ये तो आपने अनुमान लगा लिया ना, अनुमान से तो नुकसान होता है। उनको बाप की याद की सही प्रक्रिया का पता है।
लेकिन हमें तो है, हम काम कर सकते हैं ना।
है,
हमें तो है, तो हम
और जिनको है वो जन्म जन्मांतर के राजाएं हैं। जिन राजाओं ने पतित पने की अच्छी तरह से प्रक्रिया अपनाई है वो यहाँ शूटिंग भी कर रहे हैं। तो 100 गुना बोझ चढ़ेगा कि नहीं? अभी 63 जन्मों का पाप ज्यादा विकर्म बनाएगा या इस जन्म का पाप ज्यादा विकर्म बनाएगा?
काटा नहीं बनेगा।
है,
पुलिस से काटा नहीं बनता है यार।
किसका बनेगा? हाँ जी,
बाबा।
हाँ,
पांडव के जो बच्चे हैं, पांडव नाम था।
हाँ जी,
कौरव पुरुष के नाम था।
है,
यादव
नाम
था, यादव
यदुवंश है। यदुवंश है, यदुवंश जो नाम पड़ा है वो रूस और अमेरिका के जो फॉलोअर्स हैं, माने जो पुरानी दुनिया बनाने वाले हैं, जो बड़े बड़े धनाढ्य होते हैं, बड़े बड़े शराबी होते हैं, बड़े अहंकारी होते हैं, उनका नाम पड़ा है। जो समझते हैं कि हम बहुत याद करते हैं, ब्राह्मणों की दुनिया में तो इतना याद ही नहीं करते ना। वो तो समझते हैं कि हमारी याद को माया तोड़ देती है। वो समझते हैं कि हमारी तो सहयोगी है, भगवान भी हमारा सहयोगी है और माया भी हमारी सहयोगी है। हम ऊंची कुर्सी पे बैठे हुए हैं, इस आखिरी जन्म में भी हम इतने सुख में हैं।
बाबा, 108 की माला में मम्मी को लाज में बताया है तो कैसा रहा?
है,
108वां
लास्ट में क्यों, वो तो पहले ऊपर ही रखा हुआ है, है? लास्ट में नीचे वाला होगा या ऊपर वाला होगा? हाँ नजदीक तो है, लेकिन बाईं ओर या दाईं ओर? शंकर जी को बाईं ओर रखा है या दाईं ओर रखा है? बाईं ओर। तो जो रुद्रमाला के मण के दो ऊपर है उनमें बाईं ओर कौन है और दाईं ओर कौन है? प्रैक्टिकल विनाश का कारण कौन बनता है? शंकर विनाशकारी है या शक्तियां संहार कारिणी है? तो शक्तियां जो संहार कारिणी बनती है उसका मूल कारण क्या होता है? प्योरिटी से होती है स्थापना, इम्प्योरिटी से होता है विनाश। माँ काली का रूप जब तक धारण न करे तब तक विनाश नहीं हो सकता। और
मुरली ने बोला है कि बाप के जो सूर्यवंशी बच्चे हैं वो बाप और बाप की श्रीमत के सिवा और किसी चीज के आधीन में नहीं जाते।
मेरे बच्चे
वर्षे
मेरे वर्षे के अधिकारी बच्चे क्योंकि मेरे जो बच्चे हैं उनमें प्रजावर की भी आत्मा है।
किसी के आधीन
बाप की प्रजा भी बनती है तो प्रजा आधीन होगी कि नहीं होगी?
बाप के आधीन होगी।
जो बाप है वो मनुष्य होगा या भगवान होगा? मनुष्य ही तो कहा जाएगा। भगवान के रूप में भगवान जब तक प्रत्यक्ष नहीं होता है माया वायलोरा डालती रहती है, अनिश्चय पैदा करती रहती है, तो भगवान है या मनुष्य?
जब अनिश्चय में तब मनुष्य हो
तो मनुष्य हुए ना उस समय,
अनिश्चय में तब ना
अनिश्चय है तभी तो मनुष्य हो गए ना।
लेकिन बाप के साथ ही नहीं रहेंगे ना,
इसीलिए वो शूटिंग हो जाती है। माया राजा बनने नहीं देती। जो राजाई का वर्षा पाने वाले बच्चे हैं वो मेरे सिवाय मेरी श्रीमत के सिवाय और किसी के आदि नहीं होते, इसलिए मुठभर बच्चे हैं। 108 हैं राजा बनने वाले और 16108 हैं प्रिंस प्रिंसेस बनने वाले, राजा नहीं बनते हैं।
तो वो लिस्ट में वो बांदेली माताएं भी आती है?
किस लिस्ट में?
जो राजा पद प्राप्त करती है
आ सकती है,
लेकिन वो तो आधीन में है ना बाबा।
अरे अभी की आधीनता की बात थोड़ी ही है
बाबा, क्योंकि बांदेली माताएं जो है वो इंतजार में बैठी है कि जब ताला टूट जाएगा तब हम भाग जाएंगे।
ताला टूट जाएगा तब भाग जाएंगे और आधीन है, आधीन होते हुए अपनी कर्मेंद्रियों को कंट्रोल नहीं कर सकती।
लेकिन वो स्टेज कहाँ हुई अभी तक?
क्यों नहीं होगी, तुम्हें कैसे मालूम? तुम क्या अंदर अंदर सब जगह घुसे हुए हैं? मन बुद्धि को जिसने मुर्दा बना दिया वो विकारी सुख नहीं भोगता है, उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं रह गया तो वो विकारी कहा जाएगा या निर्विकारी कहा जाएगा? तन को मुर्दा बना दिया, मन को बाप की याद में ऊपर उड़ा दिया तो उनका पद बनेगा या नहीं बनेगा?
लेकिन इसका कोई गायन तो है नहीं ना?
इसका गायन नहीं है,
एक बांधेली माता का मीरा का गायन है, लेकिन वो तो स्वर्ग जाती नहीं है।
अच्छा मीरा स्वर्ग नहीं जाती? मीरा स्वर्ग नहीं जाती माने मीरा की आत्मा स्वर्ग में जाती ही नहीं
बाबा, लेकिन वो प्रैक्टिकल स्वर्ग होगा।
हाँ प्रैक्टिकल स्वर्ग में ही तुलसीदास हैं, सूरदास हैं, मीरा हैं, ये नहीं स्वर्ग में जाएंगे तो जाएगा कौन? हाँ जी
के भूल गए।
अष्टदेवों के नाम क्या है भक्ति मार्ग?
भक्ति मार्ग में जो अष्टदेवों के नाम है वो दक्षिण भारत वालों से जाके पूछो, मंदिरों में दिए हुए। क्योंकि आठ के पीछे हमको तो पढ़ना नहीं है, आपको पढ़ना है तो पूछो जाके। उन्होंने चित्र भी बनाए हुए हैं, नाम भी दिए हुए हैं, वायु देवता, इंद्र देवता, धर्मराज, कुबेर, ये नाम दिए हुए हैं अलग अलग, वरुण।
अष्टदेव में आते
हैं
अष्टदेव वाले
हैं। ये भक्ति मार्ग वालों ने नाम दिए हैं अष्टदेव के।
अष्टदेव और अष्टरतन में क्या फर्क
है? रतन जो है वो नंबर वार होते हैं, ज्यादा वैल्यूबल और कम वैल्यूबल। और रतन जो देव है, अष्टदेवों में स्लाइट अंतर है, क्योंकि आखिरी जन्म में जाके नीचे गिरते हैं और पता नहीं चल सकता, फिनिशिंग का थोड़ा सा अंतर है, बाकी वो पक्के सूर्यवंशी हैं। जो रतन है वो है अपने अपने धर्म के बारह बारह के ग्रुप के मुखिया।
तो पार्शियलिटी होती है,
जरूर पार्शियलिटी होगी। और अष्टदेव जो है वो आखिरी जन्म की सिर्फ मात्र पार्शियलिटी होती है, क्योंकि आखिरी जन्म में संघ के रंग में आते हैं। बाकी 63 जन्म वो 62 जन्म सूर्यवंश को फॉलो करने वाले होते हैं, सूर्य को फॉलो करते हैं। जैसे सूर्य पार्शियलिटी नहीं करता, तो सूर्यवंशी बच्चे भी पार्शियलिटी करने वाले नहीं होते हैं। जो बड़े बड़े पुराने परिवार होते थे भारतवर्ष में, एक बाप को आठ आठ बच्चे होते थे और उन आठ बच्चों के बच्चे पैदा होते थे, और खुदा न खास्ता दो चार भाई बड़े शरीर छोड़ दें या सात शरीर छोड़ दें, एक रह जाए, तो उनके बच्चों को वो अपने बच्चों की तरह पालना करते थे। इस नरक की दुनिया में भी ऐसे सैंपल देखे जाते हैं। तो ये तो अष्टदेव है, भगवान बाप के पहलौटी की संतान। उनमें तो जरूर श्रेष्ठता होगी। और आत्म की स्थिति की बात है, वो चाहे माताएं हो, पिताएं हो, भाई हो, बहन हो, जो आत्म की स्थिति को धारण करे, पहले धारण करे, वो इसी स्थिति में आ जाएगा।
बाबा है संगम युग 100 वर्ष का बताया गया है
जी,
उसमें किसी के लिए 40 वर्ष बताते हैं, किसी के लिए 60 वर्ष बताते हैं, किसी के लिए 50 वर्ष बताते हैं, ऐसा क्यों? और किसी के लिए 100 वर्ष भी?
किसी के लिए माना
जैसे बाप के लिए 40 वर्ष बताया गया।
हाँ, तो बाप 40 वर्ष जब पूरे होते हैं तो बाप प्रत्यक्ष होने लगता है।
वो मतलब 100 वर्ष के बाद जो प्रत्यक्ष होंगे उनके लिए 100 वर्ष?
100 वर्ष के बाद कोई नहीं प्रत्यक्ष होते हैं, 100 वर्ष के अंदर ही होते हैं।
100 वर्ष मतलब?
100 वर्ष के अंदर जो जो प्रत्यक्ष होंगे वो सब 9 लाख की लिस्ट में आ जाएंगे। टू लेट का बोर्ड लगता रहेगा। है
लगता रहेगा पर होएगा नहीं?
होएगा नहीं,
टू लेट का बोर्ड लगता रहेगा।
माने 76 में टू लेट का बोर्ड नहीं लगा, 2000 में टू लेट का बोर्ड नहीं लगा, और अभी अष्टदेव के लिए टू लेट का बोर्ड नहीं लगने वाला है। लगेगा
तो फिर और 100 साल तक
है, 100 साल तक 100 साल तक प्रत्यक्ष होंगे,
उसके बाद और कोई होगा
100 साल के बाद है, अष्टदेव के बाद दूसरा ग्रुप है, सूर्यवंशी ग्रुप ही थोड़े ही है, अष्टदेव के बाद नष्टदेव भी तो है, उसके बाद दूसरा ग्रुप है चंद्रवंशी ग्रुप, वो भी तो 12 का ग्रुप है, फिर इस्लाम वंशी ग्रुप, बौद्धि वंशी ग्रुप,
70 वर्ष तक जो है सूर्यवंशी प्रत्यक्ष हो जाएंगे
है,
70 वर्ष तक
ऐसी तो कोई बात नहीं,
अभी आपने बताया कि
सूर्यवंशी तो 9 लाख है, तो 70 वर्ष में कैसे प्रत्यक्ष होंगे, वो तो 100 साल जब पूरे होंगे तभी प्रत्यक्ष होंगे,
100 वर्ष के अंदर ही सारे धर्म की प्रत्यक्षता है, होना चाहिए
सारे धर्म के,
जैसे अभी आपने बताया कि 100 और भी धर्म है, जैसे सूर्यवंशी,
आप बीज रूप आत्माओं की बात कर रहे हैं, बाहर वालों की बात कर रहे हैं,
बीज रूप की बात कर रहे हैं,
तो बीज तो सिर्फ 9 लाख है, उनमें भी 4.5 लाख पक्के बीज है,
2000 में किस कौन सा टूलेट का बोर्ड लगा,
2000
सन 2000 में आपने
तीन मूर्तियों की प्रत्यक्षता अभी बुद्धि में नहीं हुई है, इसका मतलब
तो 95 में बता दिया ना,
हैं
95 में बता दिया
ना, बता नहीं दिया, बताया कि 2 या 3
2000 आचार्य होगी,
40 वर्ष के लिए करते हैं,
तो ब्रह्मा को 2009 तक ही मिलना है, ब्रह्मा के लिए 2009 तक ही मिलना है, 1969 से 40 वर्ष 2009 तक ही,
हाँ ठीक है, सहयोगी बन जाएगा, सूक्ष्म शरीर जब तक है तो सूक्ष्म शरीर ज्यादा पावरफुल होता है या स्थूल शरीर ज्यादा पावरफुल होता है, हैं? सूक्ष्म शरीर ज्यादा पावरफुल होता है, इसलिए जब तक सूक्ष्म शरीर है तब तक अपोजिशन है, अपोजिशन खलास होगा तो वो आत्मा बुद्धि योग से पूरी सहयोगी बन जाएगी, माउंट आबू कब जाना बंद हो जाएगा, नहीं जाना बंद हो जाएगा, ये पहले से वो ज्योतिषी यहाँ बैठे हुए हैं,
40 वर्ष दिया गया ना,
है ये निश्चित है, एक तरफ जब पूर्णमासी होती है ज्ञान चंद्रमा संपूर्ण होता है, पूरा चंद्रमा होता है, तो एक तरफ सूर्य उदय होता है और दूसरी दिशा में चंद्रमा अस्त होता है, जब तक ज्ञान सूर्य उदय नहीं हुआ है तब तक चंद्रमा पूरा अस्त नहीं हो सकता, और
चित्रों में शांति के मामले में चंद्रमा राइट साइड में दिखाते हैं, राइट एंड लेफ्ट साइड में
जब राइटियस रूप में सहयोगी होता है तो राइट साइड ही दिखाते हैं, लेफ्टिस्ट और राइटिस्ट होते हैं ना, भुजाएं भी तो लेफ्टिस्ट और राइटिस्ट होती है ना, कोई भुजाएं राइट की राइटियस काम में सहयोगी बनती है, कोई भुजाएं लेफ्टिस्ट काम में सहयोगी बनती है, ब्रह्मा की जो आत्मा है वो एडवांस पार्टी के अंदर है, विनाश का कार्य करेगी या नहीं करेगी, है करेगी, तो ये लेफ्ट का काम हुआ या राइट का, लेफ्ट का काम हो गया,
छोटी मम्मी का पार्ट जो है वो राइटियस पार्ट है ना,
हाँ जी,
मतलब आगे से हम तक सीधे चलने वाली
है,
सीधे सरल चलने वाली
है,
तो राम बाप जब और घरों में जाकर राजा की स्थापना करेंगे,
हाँ जी,
तो उसके साथ में नहीं,
क्यों
और घरों में
तो कोई बात नहीं हुई, राजाएं लड़ाई लड़ने के लिए जाते हैं, राजा की स्थापन करते हैं या रानियां स्थापन करती हैं, रानियां घर में रहती हैं, रनिवास में रहती हैं कि फील्ड में जाती हैं, हैं?
اسلام دھرم
ہم جو پوچھ رہے ہیں اس کا بات بتاؤ کہ رانیاں رنواس میں رہتی ہیں یا فیلڈ میں جاتی ہیں تو وہ گھر میں رہیں گے
رانیاں جاتی
ہیں
جاتی
ہے کوئی ایسے ہی رودرمالا کے مڑکے ہوں گے جو اپنے پتی کے اوپر بھی کنٹرول کر لیتے ہوں گے ہاں
بابا یہ جو ابھی راجستھان میں ہے ان کا کے پتھر گرے اوپر سے ان کا کے جو پتھر گرے اس کا کیا رس ہے
کیا بڑی بات ہوگی گرہ اپگرہ ہیں ان گرہ اپگرہ میں ٹوٹ پوٹ ہوتی رہتی تو جو ٹوٹا ہوا حصہ ہے وہ دوسرے گرہوں کے اپگرہوں کے آکرشن میں آ جاتا ہے ہاں زور سے بولو نا
رام والی اپنا پرجا پتا ستھاپن کرنے کے لیے اس دھرم میں جاتی ہے جنم لیتی ہے
ہاں جی
اس دھرم میں اس کی جو رانی بنتی ہے رام والی اپنا کی جو رانی بنتی ہے اس دھرم میں تو وہ چھوٹی ممی بنتی ہوگی
کیوں ممتی ہوگی دوسرے دھرم کی استھاپنا کرنی ہے اور رانی اپنے دھرم کی بنے گی جا کے تو کیا ہوا جو رام والی آتما یا انیکوں کے ساتھ سمبندھ جوڑتی ہے یا صرف وجے مالا کے ساتھ سمبندھ جوڑتی ہے وہ تو منسا کی بات ہوئی لیکن پریکٹیکل میں ابھی کیا ہے
پریکٹیکل میں ساتھ نہیں ہے
پریکٹیکل میں ساتھ بھی نہیں ہے اور بدھی کا یوگ جو ہے وہ اور دوسرے دھرم کی آتمائیں ان کو حق نہیں ہے باپ سے لینے کا
پہچانے تک تو
ارے دوسرے دھرم کی آتمائیں باپ کو پہچانتی نہیں ہے ٹائم آتا ہے تو پہچانتی ہے کبھی کوئی دھرم سہیوگی بنتا ہے کبھی کوئی دھرم سہیوگی بنتا ہے ایک بھی پاورفل گروپ تیار ہونے پر ایک دوسرے گروپ کو کھینچتے ہوئے انت میں 108 کی مالا کا سنگٹھن ایک ہو جائے گا تو بارہ بارہ کے جو بھی 9 گروپ ہیں وہ ایک ساتھ کھینچیں گے یا نمبر وار کھینچیں گے تو جب نمبر وار گروپ ہوں گے وہ اپنے اپنے ٹائم پر باپ کے نزدیک آئیں گے تو ان کی جو سہیوگنی شکتیاں ہوں گی وہ نزدیک نہیں آئیں گی تو یہاں جیسی شوٹنگ ہوگی ویسا ہی وہاں ہوگا اتنے جنم تک وہ تو بول دیا ورہ شمبھ نہ تو رہوں کماری ہاں بول رہا تھا بولتے بولتے بھول گئے
بابا 101 کی مالا میں جو دکھ دکھایا رودر سنگھ منکے میں تو راجا بولا گیا نا 108 کو تمہاری ایک من کا ہے جس میں ایک مکھ دکھا دے باقی من کو میں تو اور زیادہ مکھ دکھا دے نا راجا مجھے اتنے سارے آتم کیسے پرویش جو راجا بولا گیا ان کو تو سوراج بولا ہے تو پھر میں اور آتم کیسے اتنے زیادہ پرویش میں زیادہ میں 16 بھی مکھ بتا دیے
14
تو اتنے سارے آتم کیسے پرویش ہوگی جب راجا بننے والے آتما تو پاور فل ہوتی ہے نا
ہر جنم میں راجا بنے گی کیا
صرف شوٹنگ پیریڈ میں لوگ نے وہ تو شوٹنگ پیریڈ میں تو وہی شوٹنگ کیا
شوٹنگ پیریڈ میں کوئی پرمت پہ نہیں چلتے ہیں کیا منمت پہ نہیں چلتے ہیں کیا ارے نمبر وار ہے کیا ہمیشہ شریمت پر ہی چلنے والے ہوتے ہیں تو پھر
بابا ساٹھ میں جو راجائے آتے ہیں یہ انیک جنم میں راجا رہنے کے کارن شوٹنگ پریڈ میں بھی وہ جو پاپ ہے کیے ہوئے دوپہر کلیگ میں اس کی شوٹنگ بھی تو یہاں کریں گے نا
ہاں جی
تو ان کو مطلب سزا بھی ملے گی
سنگ میں تو سگنا پاپ بن جاتا ہے
شوٹنگ تو یہاں کرنی ہی ہوگی مطلب لاکھ گنا کا بوجھا تو ان کو ڈھونا ہی پڑے گا
करेंगे तो वो जो ढोना पड़ेगा, नहीं करेंगे तो कैसे ढोना पड़ेगा है? जिनके अंदर नेगेटिव संकल्प चलेंगे तो नेगेटिविटी आएगी। अगर संकल्प को ही रोक दिया तो प्रैक्टिकल कर्म में कैसे आएगा?
बाबा तिरुपति मंदिर में भक्ति मार्ग की एक बात पूछ रहा
हूँ।
तिरुपति मंदिर में तिरुपति भगवान की जो मूर्ति है, काली मूर्ति
है,
उनको नहलाते समय आंखों को कपड़ा बांध के नहलाते ब्राह्मण लोग, आंखों में कपड़ा बांधते
हैं
नहलाते, ऐसे कारण क्या है?
ये नहलाने वाले दिखाई न पड़े
मूर्ति को नहला रहे तो पत्थर की मूर्ति
है,
पत्थर की मूर्ति
को पत्थर बुद्धि हो जाती है। अभी अभी तो मुरली में सुना नहीं, भारत पारस बुद्धि और भारत पत्थर बुद्धि। तो अभी भारत क्या है?
नहलाने वाले कपड़े बांधते आप में,
हाँ नहलाने वाले ही तो,
लेकिन भारत चैतन्य में
जो नहलाने वाले ही तो आंख में पट्टा बांध देते हैं।
वो बांध
जिसको दरकार होगी वो आंख में पट्टा बांधेगा या दूसरा बांधेगा?
जो कुछ नहलाने वाले हाथ में पट्टा बांधते, अगर उनको दिखाई नहीं देगा नहला रहे क्या बदल कैसे
है?
जो नहलाते
उन्हें अगर ये मालूम हो कि हम किसको नहलाते हैं, जो जगत को स्नान कराने वाला है, पवित्र बनाने वाला है, हम उसको स्नान कराते हैं।
योग्य नहीं कहेंगे
अर्ध चंद्रमा दृश्य न राहु, इसका संगणक में क्या क्लेरिफिकेशन हो जाता है?
राहु माने विधर्मी आत्मा, विधर्मी आत्माएं जो है जब तक टेढ़ा चंद्रमा है तब तक उसको ओवर पावर नहीं करती अधूरे चंद्रमा को।
तब तक की बात है संगम,
ये उस समय की बात है जब चंद्रमा संपन्न बनने पर होता है, उस समय दूसरे धर्म की आत्माएं उसके ऊपर अटैक करती है। जो बाबा कहते हैं बड़े बड़े गुरु लोग होते हैं, अगर वो कन्वर्ट होने लगे तो उनके फॉलोअर्स उनके ऊपर हमला करेंगे कि नहीं? तो ऐसे ही ब्राह्मणों की दुनिया का सबसे बड़ा धर्मगुरु देहधारी कौन? तो उसके जो फॉलोअर्स हैं दूसरे दूसरे धर्मों के, इस्लामी, बौद्धी, क्रिश्चियन, जो उसकी रहबरी में पले हैं, वो जब देखेंगे कि ये कन्वर्ट होता जा रहा है गुरुजी महाराज, तो उसके ऊपर हमला करेंगे या नहीं करेंगे? इसलिए लास्ट में खेल होगा, फाइनल पेपर जिसे कहते हैं।
तो अर्ध चंद्रमा को ग्रस्त नहीं सकते, ये बात है कि अपने पूर्ण होने के बाद उसको ग्रस्त
पूर्ण होता होने पर हो आता है तभी उसके ऊपर ग्रहण लगता है राहु केतु का, और तब तक तो सहयोगी बन के रहते हैं।
बाबा खुदाना खास्ता शरीर तोड़ेंगे, ये खास्ता कौन
है? खुदाना खास्ता माने छोड़ भी सकते हैं न भी छोड़ सकते हैं। हाँ जी क्रांति, हाँ जी अति होती है तो अंत होता है, क्रांति का मतलब ही है कर अंति, किसका अंत? दुख की दुनिया का अंत या दुख की दुनिया का अंत? सुख की दुनिया का अंत नहीं नहीं होता है। त्रेता के अंत में कोई क्रांति नहीं होती है, है? अगर क्रांति नहीं होती है तो अर्धविनाश कैसे होता है? तो सुख की दुनिया का भी अंत होता है और दुख की दुनिया का भी अंत होता है, लेकिन अंत कब होगा? जब अति होती है तो अंत होता है।
हर युग के अंत में विनाश होता है ना?
हाँ जी,
हर युग के अंत में विनाश
नहीं, जब अद्वैतवादी दुनिया द्वैतवादी बनती है, दो मतों वाली बनती है, तब विनाश होता है। या तो अनेक मतों वाली दुनिया एक मत वाली बनती है, तब विनाश होता है।
त्रेता और
बाकी द्वापर के अंत में और त्रेता के अंत में विनाश की बात नहीं है, सिर्फ परंपराएं परिवर्तित होती है। और
रुद्रमाला में रूप सिखाए जाते हैं,
है?
में विजय माला के वर्षो में रूप सिखाए जाते
हैं।
हाँ, में विजय माला के मंत्र सिखाए जाते हैं।
विजय माला के मंत्र कौन मुख है?
झाड़ के चित्र में,
झाड़ के चित्र में
विजय माला के मंत्र हैं जो छोटे छोटे।
हाँ,
मुख पता है
नहीं
बाबा?
जो रुद्रमाला है रुद्राक्ष में मुख दिखाए जाते हैं, कोई में एक मुख, कोई में दो मुख, कोई में चार मुख। जो वृक्ष होते हैं रुद्राक्ष के, वो कौन से देश में ज्यादा पैदा होते हैं मालूम है? हाँ, उसका वेद का अर्थ क्या है? जो नई दुनिया का पालना करने वाला ग्रुप है, एडवांस पार्टी, उसमें जो ऊंची स्टेज पर रहने वाले हैं, वहां रुद्राक्ष के वृक्ष होते हैं। कोई वृक्ष पांच मुखों वाला दाना पैदा करता है, कोई चार, कोई आठ, एक मुख वाला विरल मिलता है। कहीं होता होगा घने जंगलों में। ऊपर क्या दिखाया?
छतरी के नीचे आठ खंभे है,
छतरी,
और उस छतरी में सिंह का मुख दिखाई देता है, अगर देखा जाए गौर से।
चित्र में क्या दिखाया?
सिंह का मुख
है
राजा के ऊपर।
हाँ जी, हाँ जी, हाँ, छत्र छाया है,
उसके नीचे आठ लाइन।
हाँ, छतरी माने छत्र छाया है,
शेर का मुख दिखाया,
शेर का मुख, छतरी में शेर का मुख दिखाया गया है। तो नई रिसर्च करी। जब स्वर्ग बनेगा तो जो बच्चे स्वर्ग में जाने वाले होंगे वो शेर की छत्र छाया में रहते होंगे। हैं? हाँ जी, हाँ जी, जोर से बोलो।
त्रिमूर्ति के चित्र में जो गंगा बहती है ना?
हाँ जी,
उसमें बहती गंगा में कमल के फूल बने हुए हैं, ऐसा क्यों
है?
बैठी गंगा में कमल के फूल खिले हुए
हैं। वो गंगा ही है, ये कैसे मालूम है? हाँ, तो गंगा ही है, ये कैसे मालूम? हाँ, कमल के फूल बहते हुए पानी में नहीं हो सकते। अगर पानी धीमी गति से बह रहा हो तो उसमें कमल का पौधा नहीं हो सकता, नहीं हो सकता क्या?
ज्यादातर तालाब में होते हैं।
हाँ, तालाब में पर कमल होता है।
और वो पानी बहता नहीं।
वो जाने कहाँ देखा, नदी में हुआ। हाँ जी
राहुल और केतु राम कृष्ण वाले आत्मा के लिए बोले।
जाओ माताओं कन्या को भी बोलने दो। कौन बोल रहा है? हाँ, ऐसे टाइम भी हो सकती है प्रवेश का। हाँ, तो एक दूसरे को अपोजिशन भी करते हैं। हाँ जी, एक दूसरे का सहयोग भी करते हैं। उसको मुसीबत होती है और क्या होती है?
राहु और केतु, ये राहु कृष्ण वाली आत्मा है।
हैं?
राहु और केतु,
राहु कृष्ण वाली आत्मा।
राहु और केतु दोनों राम कृष्ण वाली आत्मा है या क्या
है?
रामकृष्ण की आत्मा है कोई और आत्मा?
रामकृष्ण की आत्मा राक्षस थे, उनका सर काट दिया गया। बहुत अच्छा मंथन है तुम्हारा।
चंद्रमा की जो आत्मा है वो विदर्भी आत्मा है। चंद्रमा की जो आत्मा है वो विदर्भी आत्मा है।
चंद्रमा विदर्भी आत्मा है। चंद्रमा की रहबरी में पलने वाले। हाँ, ये बात है। जो माता होती है वो इतनी मोहमयी होती है कि कोई भी बच्चे को, चाहे जितना भी दुष्ट हो, अत्याचारी हो, उसकी उसको अपनी गोद से दूर नहीं करना चाहती। उस हिसाब से बच्चे बिगड़ जाते हैं। तो बच्चे बिगड़ते हैं, माँ थोड़े ही बिगड़ी हुई कहेंगे। हाँ,
लेकिन राशि तो मिल सकती है। राशि तो मिल सकती है।
राशि
राम कृष्ण की और राहु केतु की।
राम कृष्ण की राशि कहाँ मिलती है?
राम की राहु से।
हाँ,
केतु से।
तो कोई नई बात थोड़े ही, राम रावण बनता है, कृष्ण कंस बनता है। है
पहले।
हाँ जी, अगर राम रावण न बने और कृष्ण कंस न बने और दोनों साथ ही हो जाए, न हो जाए, तो फिर ये दुनिया जो पापों की दुनिया है वो खलास भी नहीं हो सकती। और
बाबा मुरली में बोलते हैं कि मैं पतित तन में पतित देश में आता हूँ, पतित तन में पतित देश में आता हूँ। जिस तन में शिव बाप प्रवेश करते हैं वो तन जो अंतिम चौरासमा जन्म होता है उसमें उतना पतित कर्म करते तो दिखा नहीं जाता हो।
तुम क्या देखने के आदि हो पतित कर्मों को?
तो ऐसा देखने में नहीं आता।
अरे ये कोई चीज देखने की होती है क्या?
तो फिर कैसा ऐसे बोला?
हैं? ये चीज कोई देखने की होती है क्या? और कोई बच्चे ऐसे होते हैं कि माँ बाप की सारे कर्म देखते रहते हैं बचपन से ही।
लेकिन ऐसा देखने
के ये प्रश्न अक्सर करके पैदा होता है कि जिस पतित तन में बाप आता है तो वो तो शादीशुदा तो है ही नहीं, तो पतित कैसे कहा जाता है? तो ये कोई जरूरी नहीं है कि आज की दुनिया में जिसकी शादी हो वो ही पतित बनता हो। बाबा ने तो शादी की परिभाषा ही दूसरी बताई है। विकार में जाना माना शादी होना।
जैसे दुष्ट संकल्प भी अगर कोई करता है, दुष्ट कर्म भी कोई करता है, या दुष्ट वाइब्रेशन भी अगर छोड़ता है, तो भी उसको जो है पतित कर्म में उसको लिया जा सकता है।
इसीलिए तो बोला है कि उपन्यास पढ़ने से और फिल्म देखने से, बायोस्कोप देखने से सबसे जास्ती बुद्धि का पतन होता है, ज्यादा पतितपना आता है।
तो ये बात कैसे लागू होती है उस आत्मा के ऊपर, हम ये जानना चाहते हैं।
मानव वो उपन्यास नहीं पढ़ सकती है। रिस्ट्रिक्शन लगा हुआ है। वो आत्मा जो है वो बायोस्कोप नहीं देख सकती, नहीं देखा होगा।
ज्ञान में आने के पहले करता होगा तो करता होगा, ज्ञान में जब से आया
करता होगा तो करता होगा, तभी पकड़ बनता होगा।
लेकिन ज्ञान में आने के बाद ऐसा तो कुछ नहीं देखा।
ये वाइब्रेशन फैल रहे हैं चारों तरफ है।
अच्छा कीजिए ताकि हमको समझ नहीं आ
रही। अच्छी तरह समझो, यहाँ कोई बोलने की मनाई थोड़े ही है, खोल खोल के बोलो। हाँ बोलो, क्या खुल के पूछो ना।
हमने तो पूछा, आप उसको
कहाँ पूछा। तुम्हें शर्म आ रही है पूछने। हाँ बोलो बोलो,
आप खुल के बताइए।
क्या खुल के बताए, हमको बताया ना। हम तो बता दी बात है कि उपन्यास पढ़ने से और बायोस्कोप देखने से आत्मा का सबसे जास्ती पतन होता है। और बायोस्कोप में क्या होता है और उपन्यासों में क्या होता है? गंदे से गंदे उपन्यास चल रहे हैं आजकल, जिसमें गंद ही गंद दिखाई जाती है।
जिस समय सुप्रीम कोर्ट ने उसमें प्रवेश किया
है,
वो उसकी लौकिक उम्र जो है 25 साल के आसपास थी
है,
25 साल के आसपास थी। तो अभी तो उसका बाल्यकाल ही चल रहा, क्या बोलते
हैं 25 साल
लौकिक उम्र,
25 साल कैसे,
27 आसपास, 25 साल के आसपास ही कोई उम्र।
हाँ 76 में 25 साल कैसे लगा लिया,
76 में 69 पकड़िए ना,
69 में प्रवेश होता है शिव का,
69 में वो ज्ञान में आता है ना,
ज्ञान में आता है
69 में, ज्ञान में आने से उसमें वो 25 बना तो ऐसा तो कुछ है नहीं।
ओ जमदे जामदे होता है क्या, मुरली में बोला है जमदे जामदे, हथेली पे आम जमाया जा सकता है क्या। अरे हथेली पर आम जमाया जा सकता है कि मिट्टी डाल दो और उसमें बीज डाल दो और आम पैदा हो जाए। परिवर्तित होने में टाइम लगता है या तुरंत हो जाता है।
69 से 77 तक का जो समय है ये उसके चेंजिंग पीरियड होता है, ये उसके लाइफ का चेंजिंग पीरियड होता है।
उसके बाद चेंजिंग नहीं होती है,
और उसके बाद तो एक बार चेंजिंग हो गया तो हो गया, फिर पूरा कंप्लीट हो गया।
कंप्लीट हो गया फिर तो पूरा प्रत्यक्ष हो जाना चाहिए,
ब्राह्मणों की दुनिया में प्रत्यक्ष हो ही रहा है धीरे धीरे।
नहीं
तब से ही हो रहा है,
जितना नहीं ब्राह्मणों की दुनिया की बात नहीं, अगर संपूर्ण प्रत्यक्षता हो जाएगी तो सारे संसार में लहर फैल जाएगी। जो आत्मा सामने आएगी दृष्टि के वही चेंज हो जाएगी।
बाबा शंकर पार्टी के नाम से
एक एक आत्मा अगर संपन्न बन जाएगी तो उसके सामने जो भी आएगा वही चेंज हो जाएगा। जैसे नेहरू जी के सामने कोई विरोधी कितना भी पीछे से विरोध करता हो, जब सामने आता था तो अवरोधी बन जाता था, विरोध भाव खत्म हो जाता था। ऐसे ही जो जो संपन्न स्टेज प्राप्त करते जाएंगे उनके सामने जो भी आएंगे दृष्टि मात्र से ही सहयोगी बनते जाएंगे, वाचा भी चलाने की दरकार नहीं रहेगी। अभी तो कितनी घिस घिस करनी पड़ती है।
चारों भाई मिल जाएंगे ब्राह्मण की दुनिया में, भी मिल जाएंगे।
हाँ जी हाँ जी,
ब्राह्मणों की दुनिया में जो भी ब्राह्मण बाप के सामने आते हैं
है?
वो तो कन्वर्ट हो ही जाते हैं ना।
अच्छा उनको माया तंग नहीं करती,
माया तो उनके कर्मों के हिसाब से तंग करती है।
और किसके हिसाब से कर्म कर्म है जो अभी चल रहे हैं उन्हीं कर्मों की बात है ना,
बाप के हिसाब से तंग नहीं करती ना
है?
बाप के जो वाइब्रेशन है अगर उस वाइब्रेशन में वो आत्मा रहती है उस पीरियड में माया तंग नहीं कर सकती,
ये कोई जरूरी नहीं।
चार अवस्था में अपना जाना पड़ता है।
हाँ जी
हाँ, वैसा एडवांस में भी होगा,
होता ही है
वो पदार्थ ना होगा पदार्थ
हाँ होगी है। जब तमो प्रधान होती है अनेकों का संग करग लगता है तो तमो प्रधान होती है, जब एक के ऊपर निश्चय बैठता है तो सत्व प्रधान होती है, एक के ऊपर पूरा निश्चय बैठता है तो सरेंडर बुद्धि हो जाते हैं, सत्व प्रधान बुद्धि हो जाती है, जैसे चलाएंगे वैसे चलेंगे। और जब तमो प्रधान बनते हैं तो दूसरों का असर पड़ जाता है।
बाबा महावाक्य आता है बाप दादा चाहे तो अब भी वापस जा सकते हैं, ये कौन से साल से लागू होती बात, कौन से साल में ये बात बाबा जी ने 77 के लिए बोला है?
हाँ जी,
कि बाप दादा चाहे तो अब भी वापस जा सकते हैं।
हाँ जी,
मैंने संपन्नता हो गई ये अर्थ हो जाता है 77।
हाँ, चाहे तो वापस जा सकते हैं, लेकिन चाहे कैसे? कोई बाप अपने बच्चों को जलती हुई आग में छोड़ करके जाता है?
उसकी बात का पीरियड बाप बच्चों के लिए जी रहे हैं, यही अर्थ होता है।
और काहे के लिए जी रहे? बच्ची के माता पिता हैं तो उनको अपना फर्ज निभाना है या ऐसे ही चले जाएंगे? साथ चलेंगे, साथ रहेंगे, साथ जावेंगे।
बच्चे बहुत काम करते
हैं।
हैं?
कि खुद तंग होते हैं, हैं? खुद घड़ी घड़ी तंग होते हैं कि बच्चे बाप को तंग करते हैं, हैं? नहीं नहीं नहीं, वो हद के बाप होते हैं, हैं?
बच्चे तंग होने के बाप क्यों पते नहीं
होते? तंग होना माना परेशान होना, परेशान वो होता है जो पर की शान में रहता है। स्थिति की शान में रहना और परेशान होना, ये दोनों विरोधी बातें। हैं? क्या बन जाएगा?
आपकी प्रतिष्ठा कब से हो रही
है? बच्चे तो होने चाहिए, बिना बच्चों के कैसे हो जाएगा? हैं?
बच्चे कब तक बन जाएगा?
बच्चों का टाइम नुदा हुआ है, बाप तो प्रत्यक्ष हो ही गया, थोड़ों के सामने प्रत्यक्ष हो गया तो, ज्यादा के सामने प्रत्यक्ष हो गया तो, जब सात्विक स्टेज होती है तो प्रत्यक्ष हो जाता है।
नवग्रह छोड़ के जो नेपच्यून जुपिटर और मार्स ये तीन ग्रह हैं, वो नवग्रह को सहयोग देते हैं।
है?
नवग्रह है।
हाँ,
तो क्या अलावा बाकी तीन ग्रह ना नेपच्यून प्लूटो और मार्स?
हाँ,
वो ये तीन ग्रह ये नौ ग्रह को सहयोग देते हैं कि ग्रह
अष्टदेव और नष्टदेव, अष्टदेवों को नष्टदेव सहयोग देते हैं या विरोध करते हैं? हैं? विरोध करते हैं।
और बारह ज्योतिर्लिंगम जो है तो अष्टदेव से क्या कनेक्शन है और उसके धर्म में विशेषताएं क्या है?
अष्टदेव से क्यों? वो बारह है, वो आठ है,
दोनों अलग है कि सिलसिले से मिले हुए?
अरे बारह जो है वो सूर्यवंशी है या दूसरे वंश के? जब सूर्यवंशी है तो अष्टदेव और नष्टदेव दोनों ही पावरफुल है ना। अष्टदेव इसलिए पावरफुल है कि बाप उनका पक्ष लेता है, नहीं तो देवताएं में अपनी ताकत तो होती नहीं। और नष्टदेव इसलिए पावरफुल है कि वो जन्म जन्मांतर का उनमें आसुरी स्वभाव भरा हुआ है, उन्हें बाप की दरकार भी नहीं है, नास्तिकपना भरा हुआ है। अलग है तभी तो नष्टदेव है, वो अष्टदेव है वो नष्टदेव है, अलग है तभी तो, नहीं तो अष्टदेव के साथ उनको भी प्रत्यक्ष होना चाहिए, उनका गायन क्यों, उनका पूजन क्यों नहीं होता? अष्टदेवों का इतना पूजन क्यों है? हाँ जी, हाँ, 12 ज्योतिर्लिंगम की पूजा होती है, उनमें भी नंबरवार है पूजा के लिए है। हाँ जी,
12 अलग अलग प्रजाति
है,
12 ज्योतिर्लिंग 12 अलग अलग प्रजाति,
क्योंकि बाप के कार्य में सहयोगी है या विरोधी है? सहयोगी है। और
बाबा आदि में 1936 में जब श्री सुप्रीम श्री सृष्टि पर आए
है,
तो भक्ति मार्ग का फाउंडेशन का बीज बोने के लिए गीता माता में प्रवेश किया और ज्ञान मार्ग का फाउंडेशन बोने के लिए सेवाग्राम में प्रवेश किया
है।
तो श्रीमत अनुसार दोनों का उम्र तो उस समय 60 साल होना चाहिए
है,
और मुरली में यह आया कि 10 वर्ष से साथ में रहने वाला माना जो सेवक राम जो थे
है?
उनके दादा लेखराज के साथ पहचान करीब 1926 से थी, 10 वर्ष पहले।
हाँ जी,
1926 में गीता माता और सेवक राम दोनों का उम्र करीब 50 साल होता है, 50 साल के लगभग आता है।
सेवक राम और
गीता माता
1926 में।
हाँ
ठीक है,
तो और पहली मुलाकात भी दादा लेखराज के साथ 1926 में हुई सेवक राम और दादा लेखराज की।
हो सकता है, हाँ हो सकता है, क्या बोला ही मुरली
है ना बाबा। हाँ, तो उसके बाद ही गीता माता को दादा लेखराज ने गीता माता को सेवक राम के साथ विवाह करके दे दिया।
विवाह करके दे दिया, ये क्या आप पीछे पीछे थे?
1926 और 36 के बीच की बात है ना बाबा
है,
बीच की बात है ना 1926।
अरे विवाह करके दे दिया कि क्या करके दे दिया, ये सब बात कहाँ से आ जाती है? कोई प्रूफ है इसका? मन के गुंसारे हैं।
लेकिन जीजा तो थे ना सेवक राम।
हाँ, सेवक राम जीजा थे, उनके बहनोई थे, वो बात पक्की है। लेकिन गीता माता अकेली माता थी या कोई दूसरी माता भी थी?
नहीं, लेकिन जब वो उन्होंने अपने साक्षात्कारों का अर्थ समझाएंगे तो अपने बहन को ही समझाएंगे ना, दूसरे और किसी को क्यों समझेंगे?
ये कोई जरूरी है
बाबा, ये हो सकता है कि जो आधी राधे थी वो पहली बीवी हो सकती है और गीता माता दूसरी बीवी हो सकती है।
ये सब बात जो है, बीवी हो सकती है कि बाबा हो सकता है, ये सब अनुमान की बात है। दीदी दादियां जो पुरानी दादियां हैं वो असली बात जानती हैं कि असलियत क्या है, बाकी हम लोग बिना प्रूफ और प्रमाण के कोई बात बोल नहीं सकते।
बाबा ये राज सिर्फ दीदी दादियां खोलेंगी, मुरली के तो नहीं आएगी।
बाबा ने तो ऐसे ही मुरली में बोला है, इनके फोटो भी इनके पास है, बच्चियों के पास
फोटो तो ठीक है, लेकिन बाबा ये सब बातें जो है,
तो जिसके फोटो होते हैं, फोटो किसके रखे जाते हैं? जिसका नजदीकी संबंध होता है उसी का फोटो रखा जाता है, दूसरों का रखा जाता है, है? अनुमान लगाने से नुकसान होता है।
दादी शांति ने तो 92 में बताया था बाबा,
हाँ
एक अंक में,
हाँ
मेरे फूफा और फूफी दोनों थे जिसके यहाँ मैं आना जाना करती थी।
हाँ जी,
ऐसा वो अंक में बताया हुआ है।
लेकिन ये थोड़ी बताया है कि सेवक राम कौन था,
कलकत्ता की बात है ना,
नाम तो नहीं बताया ना,
नाम
है
कलकत्ता,
तो कलकत्ता में कोई ढेर सारे लोग रहते हैं,
लेकिन ज्वारी के व्यापारी और पार्टनर थे ये भी बताया
है,
ज्वारी के व्यापारी और पार्टनर थे दादा।
हाँ ठीक है, उनका जो बहनोई था वो भी जो व्यापारी था, जौहरी था, और दादा लेखराज भी जौहरी थे।
सेवक राम नाम बताया?
हाँ, सेवक राम किसका नाम बताया?
पूछने गए थे कलकत्ता में।
नहीं, हम कहाँ पूछने गए?
हम गए थे, हम रविंद्र भाई से गए थे।
किससे पूछने गए?
2000 साल की बात है, जब भट्टी चल रही थी ना।
हाँ,
तो हम लोग कुछ महीने भी गए थे।
किससे पूछने गए?
वो इमारत देखने गए थे जहाँ दादा लेखराज।
तो पूछा किससे?
बुजुर्ग भाई थे 80 साल के।
हाँ,
उन्होंने कहा कि सेवक राम भी एक थे करके।
एक थे, वो उनके बहनोई थे, ये क्या पक्का है?
हमने उनसे लिखवा दिया, उनका नाम मिथानी करके नाम है, वो सिंधी है।
तो ठीक है, लेकिन उन्होंने ये थोड़ी बताया कि वो उनके बहनोई थे।
उन्होंने इतना जरूर कहा कि सेवक राम भाई थे।
अच्छा, वो तो बाबा ने मुरली में बोल दिया, उन्होंने बालर बाबा पुस्तक में भी छपा दिया।
बच्चे भी है,
हाँ जो बच्चे हैं, तो वो ये पूछना है कि वो बच्चे कहाँ हैं, उन बच्चों से सही बात पता चलेगी।
रावण जैसी आत्मा सब जगह है, रावण जैसी आत्मा सब जगह है।
हाँ जी,
रावण को भारत में ही क्यों जलाया जाता है?
भारत में
जलाया जाता है,
जलाया जाता है। हाँ जी,
जलाया जाता है।
राम कहाँ होता है? राम भी यही होता है भारत में, और रावण भी यही होता है भारत में। तो जलाने वाला कौन और जलने वाला कौन? जलने वाला रावण और जलाने वाला राम। तो अग्निबाण छोड़ता होगा है? अग्निबाण छोड़ेगा तभी तो जलेगा। आपकी बात नहीं, खुल के सामने आई दीदी को कोई दूसरा बोल पड़ा। है नहीं नहीं, वो इधर से प्रश्न हो गया ना दूसरा, तो बात अधूरी रह गई। मुरली में तो सब कुछ बता दिया, लेकिन मन की मुरली भी तो चलती है।
बाप जो है राजा बनने का पढ़ाई पढ़ाते
हैं। हाँ जी,
और सबसे ज्यादा लंबी जो राजाई की है वो इस्लाम मुस्लिम लोग धर्म वालों ने की।
कौन से युग में?
द्वापर के बाद से।
हाँ, द्वैतवादी युग में।
द्वैतवादी
युग में इस्लामियों ने सबसे लंबे समय तक राजाई की।
लंबे समय तक राजाई?
हाँ जी।
तो यहाँ पर बाप के सबसे नजदीक जाके पढ़ाई, सबसे ज्यादा पढ़ाई पढ़ने वाले भी क्या उसी धर्म से कनेक्टेड वाले हैं?
नहीं,
कैसे उनका राज्य इतना आगे क्यों कैसे जाता है? द्वापर युग के बाद ही सही, लेकिन इतना राज्य
दुनिया में जो पावरफुल धर्म है, जिनकी ज्यादा से ज्यादा जनरेशन फॉलो कर रही है दुनिया की, वो कौन कौन से हैं? दुनिया की ज्यादा से ज्यादा जनरेशन जिन धर्मों को फॉलो करती है, वो कौन कौन से धर्म है? है इस्लाम धर्म और क्रिश्चियन धर्म। ये मुख्य दो पावरफुल है ना। तो जो नई दुनिया होती है उसमें ही दो पावरफुल आत्माएं हैं, एक राम और दूसरा कृष्ण। और कृष्ण की राशि किससे मिलाई जाती है? क्राइस्ट से। वो एक खून हो गया तो दूसरा खून कौन सा हुआ है? आखिर इस्लामियों का जन्म जो है वो कौन से खून से होता है? सूर्यवंशियों से होता है या चंद्रवंशियों से होता है? है किसे होता है? त्रेता युग के अंत में इस्लाम धर्म आता है, तो उस समय कौन सी जनरेशन चलती है? राज्य किसका होता है? राम का राज्य होता है ना, जो गायन होता है शास्त्रों में। तो वो किसकी औलाद है?
लेकिन बाबा त्रेता युग में तो राम कोई और है ना?
है
त्रेता युग में राम तो राम वाली आत्मा नहीं होती।
हाँ, राम वाली आत्मा त्रेता युग में नहीं होती।
नहीं, त्रेता युग में राम के नाम पे तो नहीं होती ना।
राम के नाम पर राजा ही नहीं चलती है,
राम के नाम पे चलती है।
हाँ, तो राम जब काम करने वाला नहीं होगा तो उसकी राजाई कैसे चलेगी? त्रेता युग के पहले जन्म में राम की आत्मा राजाई लेती है या नहीं लेती है? अरे
शूटिंग पीरियड में लेती है।
हाँ, उधर नहीं लेती है
उधर तो। लेकिन बाबा राम की आत्मा कोई और ही है ना। राम की आत्मा राम नहीं रहती है ना त्रेता युग से पहले।
सीता बन जाती है,
सीता बन जाती है।
कोई भी हो, सीता हो या राम हो, दोनों मिलकर के एक संस्कार के हो जाते हैं ना। जो दोनों के संस्कार मिलकर के एक हो, चाहे उनको राम कहो चाहे सीता कहो, या दोनों को हिसाब किताब एक है, वो तो जन्म जन्मांतर साथ ही है, उनकी बात ही अलग छोड़ दो, लेकिन है तो राम का राज्य ना। तो संतान किसकी हुई? राम की संतान हुई। तो क्रिश्चियंस किसकी संतान है ओरिजिनल में?
कृष्ण की
है।
वो तो माँ बाप के बच्चे हो गए।
है
माँ बाप के ही बच्चे हो गए। तो
माँ बाप की सारी दुनिया बच्चे है।
नहीं, लेकिन वो बहुत लाडले हो गए।
कौन लाडले हो गए? लाडले देवता हो गए या पहले लाडले असुर हो गए?
जब आसुरी राज्य शुरू होता है,
आसुरी राज्य शुरू होता है 2500 साल के बाद। वास्तव में वो भी जो संतान बनते हैं वो राम की डायरेक्ट संतान नहीं बनते। 13 जन्म के बाद जो सबसे नीची डायनेस्टी में गिरते हैं जाकर के, सीढ़ी के चित्र में जो 12वीं और 13वीं डायनेस्टी कटी हुई दिखाई गई है, खंडित की हुई डायनेस्टी दिखाई गई है, उनकी औलाद बनते हैं। तो राम की डायनेस्टी में भी डायनेस्टी को खंडन करने वाले कौन है, उनकी औलाद बनते हैं। हाँ जी
बाबा, राजा का मर्तबा तो द्वापर कलयुग में होता है, सत्ययुग त्रेता में तो राजा का कोई वहां तो स्वराज्य अधिकारी होते हैं।
वहाँ कलाएं कम होती है या नहीं होती है?
होती है,
लेकिन देवान कम नहीं होता ना।
देवान कम नहीं होता, आठ कला
देवान वहाँ पे,
आठ कला का देवान कम नहीं होता है।
नहीं बाबा, राजाई का मर्तबा जो है द्वापर कलयुग में होता है।
आप कौन सी राजाई, ज्यादा अनुशासनहीनता वाली राजाई पसंद करते हैं या कम अनुशासनहीनता वाली राजाई पसंद करते हैं? आपकी कैटेगरी कौन सी है?
यहाँ जो है स्वराज अधिकारी बनते हैं।
आप बताइए, आप हम ना जो हम पूछ रहे हैं उसका जवाब दीजिए। आपको पसंद क्या है?
स्वराज अधिकारी
नहीं, अनुशासनहीन राजाई पसंद है या अनुशासन में रहने वाली राजाई पसंद है?
अनुशासन में रहने वाली,
अनुशासन रहने वाली ना।
अब जो महाराजा बनेगा तो नेचुरली द्वापर कलयुग में राजा बनेगा ही ना।
महाराजा जो संगम युग में बनते हैं वो महाराजा नहीं होते हैं।
होते हैं
सारे विश्व के महाराजा होते हैं। ये संस्कार कहाँ से भरने? तो फिर
मैं ये कह रहा हूँ जो सत्य करता जैसे राम राज्य की दुनिया में जो राजा
होते हैं
तो द्वापर कलयुग में उनको तो वो वर्षा मिलेगा ही ना।
और ऐसे कर्म की यहाँ शूटिंग करेंगे तो मिलेगी, अगर यहाँ ऐसे कर्मों की शूटिंग नहीं करेंगे तो नहीं मिलेगी।
तो इस्लाम और क्रिश्चियन के जो राजा बनते हैं वो स्वर्ग में राजा नहीं बनते होंगे ना?
ये कोई जरूरी नहीं,
राजा ही होते ही नहीं।
तो उनको तो इस्लाम और क्रिश्चियन धर्म की आत्माओं को
जो नारायण बनते हैं सत्ययुग में वो दूसरे धर्मों के आधार मूर्त नहीं होते हैं।
लेकिन वो राजयोग नहीं सीखते ना।
जो नारायण है बनने वाली आत्मा है वो सत्ययुग में राजा बनती है या नहीं बनती है?
बनती है।
और वो ही जाकर के वहाँ राजा बन जाते हैं।
लेकिन वो डायरेक्ट बाप से राजयोग सीखते नहीं है ना।
हाँ तो उतनी कम प्राप्ति होगी।
राजयोग सीखे
जो डायरेक्ट सीखेंगे उनको उतनी ज्यादा प्राप्ति होगी, जो डायरेक्ट इनडायरेक्ट सीखेंगे उनको कम प्राप्ति होगी।
राजयोग की पढ़ाई इनडायरेक्ट कहाँ?
इनडायरेक्ट नहीं होती,
डायरेक्ट होती। मैं डायरेक्ट
उसने उससे सीखा तो जो डायनेस्टी हुई वो बदलती गई ना।
डायरेक्ट से पढ़ाई पढ़ने वाले राजा महाराजा बनते हैं सब।
हाँ, डायरेक्ट से जो पढ़ाई पढ़ते हैं वो ऊंचे से ऊंचे राजा महाराजा बनते हैं।
वो आया वाया अगर पढ़ाई पढ़ा वो तो डायरेक्ट जैसा कुछ भी नहीं जाएगा उसमें।
लेकिन सत्ययुग के नारायण बनेंगे कि नहीं?
नारायण बनेंगे, लेकिन वो तो
जब सत्ययुग के नारायण बनेंगे तो उन्होंने यज्ञ के आदि में कुछ पढ़ा होगा कि नहीं पढ़ा होगा?
यज्ञ के आदि में थोड़ी पढ़ते हैं।
फिर क्या बात है, किसी ने कम पढ़ा, किसी ने ज्यादा पढ़ा, किसी ने अंत किया, किसी ने आदि किया,
पूरी पढ़ाई,
किसी ने आदि और अंत दोनों किया।
पूरी पढ़ाई पढ़ने वाले ही मेरे से पूरी वर्षा पाते हैं।
अब वो यहाँ की बात है, संगम युग में जो स्वर्णिम काल का सुख है वो श्रेष्ठ आत्माएं पाती है।
और 2500 साल का जो राज है वो पूरा ही करते हैं द्वापर युग से
है?
इस्लाम धर्म की राजाई 2500 साल चलती है विश्व में। लेकिन वो भारत में कब उनको राजाई प्राप्त होती है? भारत में
कलयुग, उनको कलयुग में राजाई प्राप्त होती
है। उनको जब तक राजाई भारत में प्राप्त नहीं होती है तब तक जो भारत में जो राजाएं बनते हैं वो यहाँ उनके प्राप्ति में जरूर फर्क होता होगा ना।
हाँ जी,
कि भारत की राजाई जो है वो अनुशासन वाली राजाई
है।
हाँ, वो संगम में कैसे फर्क पड़ता है?
जैसी यहाँ शूटिंग होती है वैसा वहाँ बनता है।
कौन सी आत्मा है
सत्ययुग को द्वापर से टैली कर सकते
तो
और त्रेता को कलयुग से टैली कर सकते? सतयुग में महाराजाएं होते हैं, राजाएं नहीं होते, और त्रेता में राजाएं होते हैं, महाराजाएं नहीं होते। द्वापर युग में महाराजाएं और राजाएं दोनों होते हैं, और कलयुग में महाराजा कोई नहीं होते, सिर्फ राजा ही राजा होते हैं।
बाबर सम्राट महाराजा का है,
है?
सम्राट बाबर
और सिर्फ भारत देश का है ना कि विदेशों का? क्या है दो भले, सम्राट का मतलब है सारी दुनिया के ऊपर राज्य करने वाला।
ऐसे बोल सकते हैं ना, पवित्र राजा और अपवित्र राजा है। पवित्र राजा भारत के,
हाँ जी,
पवित्र विदेश।
हाँ जी, हाँ जी,
पृथ्वी आज चौहान भारत के अंतिम राजा थे ना, हिंदू हिंदुओं में।
हाँ,
तो मतलब वो कौन सी आत्मा का ऐसा पार्ट था?
ऐसी आत्मा का पार्ट था? बाबा ने तो बोला नहीं कि मैं एक एक आत्मा का पार्ट बताऊंगा।
नहीं, ऐसा मतलब जैसे पृथ्वीराज चौहान को भारत के हिंदुओं का मतलब अंतिम राजा बताया गया।
हाँ,
तो भारत में जो भी आत्माओं ने राज किया है,
हाँ,
तो कलयुग के अंत में दोनों तरफ की आत्माओं ने राज किया है।
हाँ,
पवित्र आत्माएं और अपवित्र आत्माएं दोनों की आत्माओं ने राज किया है।
नहीं, कलयुग के अंत में तो प्रजा के ऊपर प्रजा का शासन हो जाता है।
नहीं, राजाई जैसे थोड़ा पहले होगा, राजाई चलती है।
हाँ,
तब तक की बात।
हाँ, जब तक भी राजाई चलती है तो भारतवासियों की तो राजाई खलास हो जाती है। कलयुग में तो विदेशी आकर के शासन करते हैं।
रामी जी तो भारत में ही आते हैं, बीज भारत में है तो फिर भारतीय हो गए ना।
ऐसे थोड़े भारतीय हो जाते हैं, कन्वर्टेड भारतीय है कि नाम कन्वर्टेड है?
अभी बहुत सारे हिंदुओं को जो कौन सा मुस्लिम राजा था उसने जो है मार मार के सबको मुसलमान बना दिया।
अच्छा,
तो जो अभी कन्वर्ट हो गए वो तो सारे हिंदू से ही मुसलमान बने हैं ना, कन्वर्टेड?
हाँ, तो कन्वर्टेड हुए ना, उनकी जाति बदल गई ना।
उनको हिंदू कहेंगे मुसलमान कहेंगे?
जो पक्का हिंदू होगा वो कभी कन्वर्ट नहीं होगा। तुम हो देवी देवता सनातन धर्म के पक्के? हाँ जी, जो पक्का अपने धर्म का होगा वो और धर्म में कन्वर्ट होकर के जा न सके, मुरली में बोला है।
नौ लाख वाली आत्मा सब आ जाएगी।
है,
नौ लाख वाली आत्मा सारी आ जाएगी।
किसमें?
पक्की वाली।
हाँ,
पक्के देवी देवता में।
तब तो वो सतयुग में, सतयुग के पहले जन्म में और संगम युग में वो सोलह कला संपूर्ण राजा ही प्राप्त करते हैं।
रामायण जी भाई
है,
रामायण जी के भाई है। संकट कृपाला दीन दयाला का कल्या हिता है। तो भाई संगम युग में किस समय की वर्णन होना
है?
संगम युग में किस समय की वर्णन होना?
संगम युग की जैसा प्रत्यक्षता होती है दोपहर में,
ये लागू सकती है। की पारा दीन दयाला कौशल्या हिता
है। सिखों में कहते हैं दोपहर के 12 बजे उनकी अकल ठिकाने आती है, तब तक उनकी बुद्धि में नहीं बैठता। तो ज्ञान सूर्य की प्रत्यक्षता अमृत वेला होती है या दोपहर के 2 बजे? है, दोपहर के 2 बजे। विदेशी लोग तो 12 बजे मानते हैं। बाबा ने मुरली में बताया कि वास्तव में जब कृष्ण वाली आत्मा संपन्न बन जाती है तो बाप भी प्रत्यक्ष हो जाता है। बच्चे के बगैर बाप प्रत्यक्ष नहीं होता। और जो दूसरे धर्म की आत्माएं हैं उनमें सबसे लास्ट का धर्म है, यहाँ राजा ही चली है। कौन सा? नहीं, सबसे लास्ट का धर्म कौन सा है जिसमें राजा ही चली है? और समझ राजा ही होती है
सिख धर्म।
सिख धर्म तो लास्ट में ही समझेंगे या सवेरे ही समझेंगे? जब खूब सूरज ऊपर चढ़ जाता है, बहुत तपत हो जाती है, तो बुद्धि खुल जाती है।
हाँ, इस्लाम सबसे
है।
हाँ, इसको सबसे जास्ती राजाई
क्यों मिली? राजाई इसलिए मिली कि उनका बुद्धि का ठिकाना एक जगह रखा हुआ है,
काबा।
काबा में। दुनिया के किसी भी देश में मुसलमान रहने वाला होगा, उनके जीवन का लक्ष्य ये होगा कि हम अपनी जिंदगी में एक बार काबा के दर्शन जरूर करेंगे। सारा जीवन उनका बुद्धियोग एक जगह रखा रहता है।
वहां जाने के बाद वो हाजी बन जाते हैं।
हाजी, हाजी बन जाते हैं, हाजी नहीं। अब तो टाइम तो बहुत हो गया।